इसराइल के एक नामी वकील योएल सिंगर का मानना है कि उन्होंने यासिर अराफात से अच्छा वार्ताकार नहीं देखा। वो एक हॉलीवुड फिल्म के जुआरी की तरह थे जिसके पास खराब पत्ते होते हुए भी वो हमेशा लोगों को झांसा देता रहता था कि आखिर में जीत उसकी ही होगी। जब सब समझते थे कि बातचीत अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है और अब बस समझौता होने भर की देर है, अराफात अचानक अपनी मांगे बढ़ा देते थे। अगर हस्ताक्षर समारोह कल है तो अराफात आज अपने लिए ज्यादा से ज्यादा रियायत लेने की फिराक में रहते थे। 13 नवंबर 1974 का दिन यासिर अराफात के लिए खास था। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उस दिन काफी कड़ी सुरक्षा थी। फलस्तीन मुक्ति संगठन के प्रमुख यासिर अराफात को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्लेनरी सत्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। पहली बार किसी राष्ट्र का नेतृत्व न करने वाले शख्स को यह सम्मान मिलने वाला था। उस जमाने में अराफात के करीबी और बाद में फलस्तीनी प्रशासन के पहले विदेश मंत्री नाबिल शात को वो दिन अभी तक याद है।
He was very composed and he accepted what he never accepted before or after, namely to shave his beard completely and totally.
अराफात ने पहली बार वो चीज मानी थी जो पहले उन्होंने कभी नहीं की थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी पूरी तरह से साफ करा दी थी और नया सूट भी पहना था। उनके खाकी सूट पर बहुत ढंग से प्रेस की गई थी और वो बिल्कुल चमक रहे थे।
उस दिन अराफात न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर से सीधे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे थे। ठीक उसी समय कारों का एक काफिला वाल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल की तरफ रवाना हुआ था ताकि अराफात के विरोधियों को यह आभास दिया जाए कि वो कार के जरिए अपने होटल जा रहे हैं। उस दिन अराफात ने अपने भाषण का अंत दो यादगार वाक्यों से किया था। मैं यहाँ जैतून की शाख और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लिए आया हूँ। मेरे हाथ से इस जैतून की शाख को गिरने मत दीजिए। इसको अगले दिन दुनिया के लगभग हर अखबार ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी थी।
मैं यहाँ जैतून की शाख और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लिए आया हूँ। मेरे हाथ से जैतून की शाख गिरने मत दीजिए।
इस भाषण के 9 दिनों के अंदर संयुक्त राष्ट्र ने अपना प्रस्ताव नंबर 3237 पारित कर पीएलओ को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया। अराफात दाढ़ी नहीं बनाते थे। उनकी शक्ल ऐसी दिखती थी जैसे उन्हें तुरंत नहाने की जरूरत हो। अराफात की जीवनी लिखने वाले एलन हार्ट लिखते हैं,
अराफात नाटे कद के शख्स थे, करीब 5 फीट 4 इंच लंबे या शायद इससे भी कम। अराफात चाहे जहां भी हो या कुछ भी कर रहे हो, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। उनके मुख्य राजनीतिक सलाहकार हनी हसन बताते हैं कि किसी जगह पर बैठने से पहले अराफात हर उस कोण का अध्ययन करते थे जहां से उन पर गोली चलाई जा सकती हो। हम बातचीत में खोए होते थे कि अराफात अचानक हमें रोककर अपने बैठने की जगह बदल लेते थे। हमने उनसे कभी इसका कारण नहीं पूछा। उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना गुप्त रखा जाता था कि उनके नज़दीकी लोगों को भी पता नहीं होता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। फरवरी 1973 में इसराइल ने लीबिया का एक यात्री विमान मार गिराया था, जिसमें विमान में सवार सभी 100 यात्री मारे गए थे। अराफात ने मुझसे कहा था कि मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बाद में पता चले कि इसराइल ने इस उम्मीद में विमान गिरा दिया था कि उस पर मैं या हमारे दूसरे साथी सवार थे।
भारत के पूर्व राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मध्य पूर्व दूत चिन्मय गरे खान को उनसे कई बार मिलने का मौका मिला था।
अराफात से मेरी बहुत दफे मुलाकात हुई, सैकड़ों बार कह सकते हैं, क्योंकि मैं गाजा में पोस्टेड था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। वैसे बड़े चार्मिंग थे, चार्मिंग हो सकते थे जब वो चाहते थे, और उनकी सबल थी, वो दाढ़ी बाढ़ी तो थी उनकी, और हमेशा उनको वो फौजी लिबास में वो ड्रेस करते थे अपने आप को, पिस्तौल यहाँ लगा के और कैफिये बांध के सर पे। एक तरह से सिंपल आदमी थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, लेकिन जहाँ तक कि पैलेस्टाइनियन इशू का मुद्दा था और इसराइल के साथ रिलेशन की जो बातचीत थी, उसमें वो बड़े माहिर थे और बड़े सस्पिशियस नेचर के थे। उन्होंने शादी भी करी, पहले तो कहते थे कि मेरी शादी तो पैलेस्टाइन से है, मैं किसी से शादी ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने शादी करी सुहा अराफात से। सुहा अराफात क्रिश्चियन थी और अराफात तो क्या सुन्नी मुस्लिम थे। कहते हैं कि सुहा अराफात को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम में थी उनके साथ, तो अराफात ने मंजूरी किया कि चलो भी शादी कर ले। उनकी एक बच्ची थी, अब तो खैर बहुत बड़ी हो गई होगी। तो गाजा में रहते थे एक छोटे से घर में, मॉडेस्ट हाउस था, एक दो फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी पत्नी रहती थी अपने बच्चे के साथ।
अराफात हमेशा सैनिक कपड़ों में ही दिखाई देते थे, उनके जूते ब्रिटिश सैनिक अफसरों की तरह हमेशा चमकते रहते थे। यासिर अराफात की एक और जीवनी लिखने वाले बैरी रूबिन और जूडिथ कॉल्प रूबिन लिखते हैं,
अराफात सूट और टाई इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि ये पश्चिम की पोशाक थी और दूसरे महंगे कपड़ों से अय्याशी का आभास होता था, जिसका अंतर्निहित अर्थ था भ्रष्टाचार। उनकी अधकचरी दाढ़ी देखकर कोई भी कह सकता था कि वो एक गरीब फलस्तीनी किसान हैं। उनकी ये वेशभूषा उन्हें लड़ाई के मैदान में एक सैनिक के रूप में भी दिखाती थी, जिसके पास निजी ठाठ बाट के लिए समय नहीं था। खुमैनी, हाफिज असद, सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन सब देखने में अच्छे दिखते थे, जिनको किसी हॉलीवुड थ्रिलर में सुपर विलेन के तौर पर दिखाया जा सकता था, जो पूरी दुनिया को जीतने पर आमादा थे। अराफात अपने कपड़ों और हाव भाव से इसके ठीक विपरीत दिखाई देते थे और दूसरों को ये गलत फहमी हो सकती थी कि उनको आसानी से मात दी जा सकती है।
अराफात दो पारियों में सोया करते थे, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक, इसलिए आधी रात के समय वो अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में रहा करते थे।
जब वो उनसे अपॉइंटमेंट मांगे या मिलने को कहे तो कभी मना तो करते ही नहीं थे और हमेशा रात को 11-12 बजे ही मिलते थे। और जहाँ मैं गाजा में रहता था वो उनके ऑफिस के बहुत पास था, तो कभी कभी तो मैं पैदल भी जा सकता था। और रात को ही वो सबसे ज़्यादा अलर्ट भी होते थे और हमेशा नीचे आते थे अपनी गाड़ी तक हमको छोड़ने के लिए।
अराफात हमेशा अपनी कबर में पिस्टल लटका कर चलते थे। जब वो पहली बार संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने गए तो उनसे कहा गया कि सभागार में हथियार ले जाने पर मना ही है। समझौता इस बात पर हुआ कि वो अपनी खाकी वर्दी पर पिस्टल का हॉलस्टर तो लगाए रखेंगे लेकिन उसमें पिस्टल नहीं होगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को उनसे कई बार मिलने का मौका मिला था।
कैरो में एक बार जब कई मुलाकातों के बाद वो गले लगते थे, उनका भी फिदेल कास्ट्रो जैसा एक मशहूर बेर हग होता था, तो वो गले मिले तो उनके जो कमर पे जो बांधी हुई पिस्तौल जो है, उस पिस्तौल को उठाने को बड़ा आसान मौका मेरे हाथ में था। तो मैंने बोला अगर यही पिस्तौल मैं उठा के अगर आपके जान पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता तो आप इतने मतलब विजिलेंट क्यों नहीं हो कि ये काम हो सकता है, कोई कर सकता है। तब उसने बोला यार सुनो मैं एक राज बता दूं आपको। बोला क्या है? कहते हैं पिस्तौल में कोई गोली नहीं है। तो मैं बोला फिर क्यों ले चलते हो साथ में? कि क्योंकि मेरे पास पिस्तौल है, उसको देख के कई सारे लोग जो गोली चलाना चाहते हैं वो भी थोड़ा झिझक जाते हैं। अब ये बात अब वो नहीं है तो बोल सकते हैं, वरना ये राज जब वो जिंदा रहते थे खोलना बड़ा मुश्किल था।
मशहूर पत्रकार श्याम भाटिया को यासिर अराफात से कई बार इंटरव्यू करने का अवसर मिला था। एक बार इंटरव्यू के दौरान वो उनसे नाराज हो गए थे।
यासिर अराफात को मिलना उन दिनों में बहुत बहुत मुश्किल था। एक बार बहुत मुश्किल से मुझे अल्जीरिया में गया था तो किसी दोस्त ने कहा कि मैं मिलवा दूंगा और 10 मिनट की इंटरव्यू हुई। यासिर अराफात के दफ्तर में से किसी सेक्रेटरी आदमी के साथ मेरी एक किस्म की दोस्ती हो गई, तो उसने कहा देखो अगर तुम अराफात से मिलना चाहते हो तो उनको शहद बहुत पसंद है, अगली बार अगर कोई मौका मिला तो उनको शहद लेकर ले आओ। तो मैं तूनिस गया और इंटरव्यू हुई उनके साथ। उसके अखीर में मैंने कहा अराफात जी सुना कि आपकी शादी हुई है, आपकी बीबी के साथ मुलाकात हो सकती है? एकदम नाराज, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुसलमानों में बीबी की बातें ऐसे कोई बाहर से करे तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल है? क्या बेवकूफी कर रहे हो? मैं भी डर पड़ा तो मैंने कहा सॉरी अराफात जी, मैं तो बस अखबार के लिए पूछ रहा था, निकलो यहाँ से, इस कमरे से निकलो। तो जाते जाते मैंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ पर आपके लिए मैं एक बोतल शहद की छोड़ा हूँ, वो मैं छोड़ मेज पर छोड़ आई और वापस मैं होटल गया। तो دروازے پر کھٹ 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 ہوا, تو میں نے دروازہ کھولا اور عرفات کے دو فوجی کھڑے ہوئے تھے. کہاں جا رہے ہو تم؟ میں نے کہا جا رہا ہوں انٹرویو ہوگی. نہیں نہیں تم نہیں جاؤ گے, تم ہمارے ساتھ چلو گے. اور مجھے بس پکڑ کے لے گئے, گاڑی میں ڈالا. جیسے میں نکلا تو میں دیکھا عرفات سامنے کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت. تو میں نے کہا عرفات جی آپ تو ناراض ہو گئے تھے. ارے وہ تو نقلی غصہ تھا, یہ میری بیوی ہے, ان سے ملیے اور میرے ساتھ ہم تینوں لنچ کھائیں گے. لنچ ہوا ان کے ساتھ, دو تین گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھے رہے.
بعد میں عرفات دمپتی اور شیام بھاٹیا کی نزدیکی اتنی بڑھ گئی کہ ایک بار عرفات کی پتنی نے اپنی 1.5 سال کی بیٹی زہوا کی بیبی سٹنگ کی ذمہ داری انہیں سونپ دی.
میں ان دنوں میں القدس جروسلم میں تھا, میرا دفتر وہاں تھا, تو جروسلم سے غزہ کو 1.5 گھنٹہ کا رستہ ہے. تو مجھے بلاتے رہتے تھے, میں جاتا تھا آتا تھا. ایک دن میں گیا تو سوہا عرفات ان کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا دیکھو تمہیں بلایا تو گیا ہے انٹرویو لینے کے لیے, پر ہمیں باہر جانا ہے اور ہماری جو بیٹی ہے زہوا ان دنوں میں میرے خیال 1.5 سال کی تھی, کوئی بیبی سٹر ہے نہیں تو تم اس کا خیال کرو. تو میں نے کہا سوہا جی میں کیا کروں؟ بس ٹھیک ہے تم پریم میں لے کر آگے پیچھے گھومو ان کے ساتھ. اور میں سوٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے اور عرفات اور مسز عرفات کی بیٹی زہوا پریم میں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں جرنلسٹ ان کو آگے پیچھے ہلا رہا ہوں اور میرے پیچھے فلسطینی فوجی بندوق لے کر میرے پیچھے, جیسے میں آگے جاتا تھا وہ میرے پیچھے پیچھے, اور میرے ہاتھ میں عرفات کی بیٹی کی ذمہ داری. یہ آدھا گھنٹے کی بات ہوئی آگے پیچھے. جب وہ روتی تھی تو میں کہتا چپ چپ کو نہ رو زہوا, ٹھیک ہے ڈیڈی آ جائیں گے, ممی آ جائیں گے. اور اس کے بعد گھنٹے کے بعد وہ آگے اور میری انٹرویو ہو گئی.
یاسر عرفات اپنی ہوائی یاترا کو بہت گپت رکھتے تھے اور میزبان دیش کو پہلے سے نہیں بتایا جاتا تھا کہ وہ وہاں آنے والے ہیں. ان کا اکثر بھارت آنا ہوتا تھا. وہ اندرا گاندھی کو اپنی بہن مانتے تھے.
جب بھی عرفات یہاں آتے تھے پہلے سے نوٹس ہم لوگوں کو ملتی نہیں تھی. وہ تو جب میڈ ایئر ہوتے تھے, جب پہنچنے والے ہوتے تھے ایک آدھ گھنٹے میں, تبھی وہ خبر آتی تھی کہ میں آ رہا ہوں. وہ ایسے ہی آتے تھے سیکیورٹی وجہ سے, سیکیورٹی ہمیشہ وہ ڈرتے تھے. تو ایسے ان کے سمبندھ تھے کہ جب بھی انہوں نے سوچا کہ اندرا سے ملنا ہے, مائی سسٹر کر کے کہتے تھے.
1983 میں بھارت میں جب گٹ نرپیکش دیشوں کا سمیلن ہوا تو وہ اس بات پر ناراض ہو گئے کہ ان سے پہلے جارڈن کے شاہ کو بھاشن دینے کا موقع دیا گیا. بھارت کے پورو ودیش منتری نٹور سنگھ اس سمیلن کے مہا سچیو تھے.
ساتواں نولنائے سمٹ مارچ 1983 میں ہوا تھا اور اس کے چیئرمین تھے فیدل کاسترو. صبح کے سیشن تک, اس کے بعد پھر اندرا گاندھی بنی تھی. تو صبح کا سیشن ختم ہو جانے کے بعد جو میرے ڈپٹی تھے ستی لامبا, وہ آئے کہ صاحب بہت بڑی آفت پڑ گئی ہے کہ یاسر عرفات بہت ناراض ہیں اور ابھی اپنے جہاز میں جانے کو دیا ہے واپس. میں نے پھر اندرا جی کو ٹیلی فون کیا, میں نے صاحب یہ بڑی آفت ہو رہی ہے, آپ یہاں آ جائیے اور میں کاسترو صاحب کو بھی لے آئیے وگیان بھون. میں نے یہ کہا کہ صاحب صبح کے سیشن میں مجھے جارڈن کے کنگ کے بعد میں بولنے کو کہا اور میری انسلٹ ہو گئی ہے, مجھے ان کے پہلے بولنا چاہیے تھا. کاسترو صاحب آئے اور انہوں نے ٹیلی فون کیا یاسر عرفات کو, کہا آپ آ جائیے یہاں وگیان بھون میں. تو وہ آ گئے تو کاسترو صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ اندرا گاندھی تمہاری دوست ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مسٹر کاسترو کیا کہہ رہے ہیں آپ, میری دوست نہیں بڑی بہن ہے. تو انہوں نے کہا پھر بڑی بہن ہے تو یو بہیو لائک یانگر بردر اینڈ کم ٹو دا آفٹرنون سیشن. تو آ گئے.
راجیو گاندھی کے ساتھ بھی ان کی بہت گھنشٹتا تھی. کہا جاتا ہے کہ ایک بار انہوں نے بھارت میں راجیو گاندھی کے لیے چناؤ پرچار کرنے کی پیشکش کی تھی.
راجیو گاندھی بڑے ایموشنل آدمی تھے اور اندرا گاندھی اتنی ایموشنل نہیں تھی, وہ ریالسٹک پریگمیٹک تھی کیونکہ ان کو اتنا سارا تجربہ ہو چکا تھا. راجیو گاندھی نئے نئے تھے کمپیریٹیولی, جب بھی ملتے تھے تو بہت یعنی گلے لگ کے اور بہت اچھی طرح سے ان کا آدر کرتے تھے. عرفات نے خود مجھے کہا کہ میں نے میسیج بھیجا ہے کہ میں ان کی الیکشن کیمپین کے لیے مدد کر سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ راجیو گاندھی اس سے ناخوش نہیں تھے کیونکہ بھائی پولیٹیشینس کے لیے جہاں بھی کچھ بھی مدد مل جائے وہ ویلکم ہے, لیکن عرفات کا یہ کلیم تو تھا کہ میں نے کہا ہے کہ بھائی میں مدد کرنے کیمپین کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کیمپین کیا تو نہیں, کرنے تو نہیں دیا, لیکن وہ ٹھیک بھی نہیں لگتا کوئی فارن لیڈر آ کے کرے. لیکن اگر عرفات نے ایک اپنے فالوورس کو میسج بھی بھیج دیا ہو कि भी राजीव गांधी को सपोर्ट करना, तो आई थिंक राजीव गांधी उससे खुश रहे होंगे।
राजीव गांधी की तरह बेनजीर भुट्टो से भी यासिर अराफात की बहुत नजदीकी थी। एक बार दोनों के बीच एक मजेदार वाकया हुआ। जब बेनजीर प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने अपने चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अरशद समी खां से कहा कि यह ख्याल रखिएगा कि मैं किसी पुरुष नेता से हाथ नहीं मिलाती। इस बीच अराफात का कराची आना हुआ और बेनजीर उन्हें रिसीव करने हवाई अड्डे गई। अरशद समी खां अपनी आत्मकथा थ्री प्रेसिडेंट्स एंड एन एड में लिखते हैं,
चीफ ऑफ प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है कि वो विमान के अंदर जाकर विदेशी मेहमान का स्वागत करे। मैं अराफात के विमान की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि बेनजीर ने मुझे बुलाकर मेरे कान में कहा, अराफात को याद दिलाना मत भूलना कि मैं पुरुषों से हाथ नहीं मिलाती। जैसे ही अराफात मिले मैंने उनसे कहा, एक्सलेंसी बेनजीर भुट्टो आपका स्वागत करने के लिए नीचे खड़ी हैं, आपको मैं बस एक बात याद दिला दूं कि वो पुरुषों से हाथ नहीं मिलाती। अराफात ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे कई बार बताया गया है, बहरहाल याद दिलाने के लिए शुक्रिया। जैसे ही अराफात नीचे उतरे मैं देखता क्या हूं कि उन्होंने बेनजीर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बेनजीर ने घूर कर मेरी तरफ देखा और झिझकते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। अभी हम लोग चले ही थे कि उन्होंने मुझसे फुसफुसाकर उर्दू में कहा ताकि अराफात समझ न पाए, आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता अराफात ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, शुक्र मनाइए मोहतरमा कि मैंने आपका चुंबन नहीं लिया। ये एक अरबी रस्म है कि जो भी मेरा स्वागत करने आता है मैं उसके गाल चूमता हूँ, एक बार नहीं दो बार दोनों गालों पर। हम तीनों ने ठहाका लगाया और सलामी मंच की तरफ बढ़ गए।
علمنا علم فلسطين ريحان فضل بي بي سي دلي